तत्वा सूत्र लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धे स्वामी जी से रचित जो तत्वार सूत्र नामक शास्त्र है उसके हम तीसरे पहले अधिकार के तीसरे सूत्र को देख रहे थे। वहां पर उन्होंने निसर्गज और अधिगमज ऐसे सम्यक दर्शन के दो भेद बताए। इसमें ये बात है, निसर्गज का अर्थ होता है कि उस जीव को उसी भव में देशना नहीं मिली है, पूर्व भव में कहीं मिली है और वो अभी उसको याद आती है और उसकी देशना लब्धि हो जाती है। देशना मिलना ये पर्याप्त नहीं है, उसको देशना लब्धि में कन्वर्ट होना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने भेद बताया है वो अधिगमज। अधिगमज का अर्थ ऐसा होता है कि उसी भव में उस जीव को उपदेश मिलता है और वो अपना आत्मानुभूति का कार्य कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हमने देखी थी कि निसर्ग जो हो या अधिगमज, कोई भी सम्यक दर्शन, उसको तो देशना मिलनी ही चाहिए। अब ये ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। अभी हम अभी पेज नंबर 18 पर आए। 18
गुजराती 13।
अच्छा, गुजराती 13
तीसरे सूत्र के नीचे
वो हो गया ना, आगे गए हम। एक नंबर का पॉइंट जो लिखा है, जिस जीव के सम्यक दर्शन प्रकट होता है उस जीव ने उस समय अथवा पूर्वभव में सम्यक ज्ञानी आत्मा से उपदेश सुना होता है। देखो, सम्यक ज्ञानी कहने से चतुर्थ गुण स्थान से लेकर केवली तक के गुणस्थानों के सबको उसमें इंक्लूड है, लेकिन वहां 8वां 9वां 10वां 12वां होगा कि नहीं? नलिन भाई, होगा। और 11वां हो सकता है, बराबर। देखा, देखो, तुम किसमें लीन हो गए?
देश का कोई
छठे तक, हाँ, चौथा, पांचवा, छठा अथवा 13वां।
सातवें में ऐसा है कि वो देश देते हुए उनका छठा सातवां चलता है, इसलिए सातवें की बात करें क्योंकि उसका जो पाद है, जैसे उपदेश देते देते के बीच में अपना सातवां प्रकट हो रहा है, उनके आहार विहार उपदेश आदि के काल में भी छठा सातवां चलता है, उस अपेक्षा से कहें तो काल इतना छोटा है ना, बीच में अपना वो कर लेते तो उसका उस काल में वो भले वो बाह्य क्रिया दिखाई दे रही है परंतु उनका शुद्ध प्रकार है। जैसे आप अभी आंखें ढूंढाते हो, कितना क्या होता है, भोजन कर रहे हैं, आंखें बंद करके करते हैं कि उपदेश में बोल रहे हैं ना, तो बीच में कितने असंख्यात समय तो चले जाते हैं, कितना अंतर्मुख तो चला जाता है ना, एक वाक्य हुआ दूसरा शुरू किया, अभी हम बोल रहे हैं, बीच बीच में।
अब पहले में हम ऐसा पूछेंगे आपसे,
ये बोलना तो जीव की क्रिया है ही नहीं, तो ये ऐसा नहीं, वो प्रवृत्ति आप देख रहे हैं। प्रवृत्ति होना अलग बात है, वो तो योग हुआ, उसमें वो प्रवृत्ति चली और वो उपयोग, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, शुभ उपयोग चल रहा है और पूजा गा भी रहे हैं, सुनने वाले तो बहुत अच्छे गाँव गौरव कर सुन रहे हैं, तो अपना उपयोग पलट के कहीं अशुभ में जाके आता है कि नहीं आता है? तो मुनिराज जब बोल रहे हैं तो उनके भी शुद्धोपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता?
तो हो सकता,
ये बात
हम क्रिया की तरफ देखेंगे तो ये बात जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। हमारा ध्यान चल रहा है, वो बोल तो रहे, उपदेश तो दे रहे,
मेरे छठा सातवा गुणसान ऐसा स्वरूप है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है।
हम तो स्थूलता से देखेंगे तो चौथा पांचवा छठा नक्की है और तेरहवा भी नक्की है, अब सातवें में अपेक्षा से उनको कह सकेंगे, उसमें भी गलत कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बता रहे, देखो संभव क्या कहा, जिस जीव के सम्यक दर्शन प्रकट होता है उस जीव ने उस समय अथवा पूर्व भव में, ये उस समय जो लिखा है उस भव में अथवा पूर्व भव में सम्यक यानी आत्मा से उपदेश सुना होता, उस समय यानी उसने देशना ली और तुरंत वो अपने स्वरूप की तरफ गए, तो उस समय में कहेंगे हम। अब ठीक है, उनका जो कहना है वो उपदिष्टि तत्व का श्रवण, उपदिष्टि यानी उपदेश किया हुआ तत्व का श्रवण, ग्रहण धारण होना, विचार होना, उसे देशना लब्धि कहते हैं। उसके बिना, उसके बिना यानी देशना बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वह उपदेश सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है। जीव सम्यक दर्शन को स्वतः अपने में प्रकट करता है, ज्ञानी का उपदेश तो निमित्त मात्र है। ये देखो बात ऐसी है, उपदेशी सम्यक दर्शन करा देवे तो जिनेन्द्र भगवान के समोचरण में तो कितने जीव होते हैं, कितने होते हैं भाई? अनंत। आप क्या कहते हैं, आप कभी गए नहीं? आपने क्या बताया? आपने असंख्यात बताया, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा, आपने मेरा प्रश्न भी काट दिया। तो मुझे ये पूछना था कि मनुष्य असंख्यात होते हैं कि तीरंज असंख्यात होते हैं, क्या देव असंख्यात होते हैं, तीनों में से कौन कौन से असंख्यात होते हैं? पता नहीं, आप कहाँ छोड़ के आए, बोलो साहब। तीरंज देव सुनना, मनुष्य भी हा? तो अभी अभी कहाँ छिड़ लेके आए? पहले में पहले ये नक्की करो भाई, जो पर्याप्त मनुष्य है उनकी संख्या ही संख्यात है, उस संख्यात में से कुछ आएंगे, वहां सारे थोड़ी आने वाले, ख्याल में है ना? तो मनुष्य तो संख्यात होंगे, तीरंज भी संख्यात होंगे, जो पांचवे सॉरी पंचेंद्रिय संगी जो है,
परंतु पूरे विश्व के थोड़े ही पंचेंद्रिय तीरंज आने वाले, कीर्तन करके जो जहाँ चल रहा है उस एरिया के आएंगे,
लेकिन देव असंख्यात आएंगे क्योंकि उनमें ऐसा कैपेसिटी है कि भाई वैक्रिक शरीर के द्वारा उनके जो ये होता है, मतलब जो बैठने की जगह सभा है उसमें अधिक जगह, मतलब कम जगह में अधिक लोग बैठ सकते हैं,
तो माने उनका मूल शरीर वहाँ ही रहता है,
वैक्रिया शरीर के साथ यहाँ विक्रिया के धारी जो है, तो विक्रियाधारी जो शरीर है विक्रिया से बना हुआ उसके साथ यहाँ आए और मूल शरीर वहीं छोड़ के आए।
तो उपयोग किसमें रहता है?
दोनों तरह,
उपयोग इंद्रियों तो पकड़ते हैं बस. आपका कौन सा इंद्रियों में उपयोग चलता है?
ऐसा है कि मान लो यहाँ पर एक देव का शरीर है और एक यहाँ पर है, तो बीच में ऐसा एक थिन लाइन होती है आत्म प्रदेशों की.
कंटिन्यूस है ना, उसमें तो खंड नहीं हुए हैं,
वो टूटता नहीं.
अखंड आत्मा है.
ये लेजर बीम्स कैसे दिखते हैं? एकदम अपने को दिखते हैं, ये तो दिखता भी नहीं. वैसे एकदम पतली, मतलब देव जहाँ रहे होंगे, जिस स्वर्ग से आए होंगे, उनके यहाँ तक के कनेक्शन रहता है. कनेक्शन कभी भी टूटता नहीं. अभी एक ने एक से अधिक लाखों भी वो शरीर बने तो सब में डिवीजन हो सकते हैं. कैपेसिटी क्या है? वो तो आत्मा तो कभी खंडित होता ही नहीं ना भाई.
जैसे 20 तीर्थंकर अंतर माने उनके सब में जाना है तो सब में एक दिन
जाना. 170
तीर्थंकर जब होते हैं,
170 जगह पे
जाना. इंद्र की बात हम करेंगे तो
एक और वैसे वहाँ के जो सेना वगैरह बनाते हैं, एक एक जीव हजारों की सेना बनाते,
लाखों की बनती.
आप लाखों की बनाओ.
देखो हमें ऐसा कुछ क्या लगता है, सब अपना जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रथमानुयोग में कहो या हम भूगोल में बात सुनते हैं, तो राजा वो क्या नाम है इंद्र, जब वहां से निकलते हैं तो एक देव को बोलते चल हाथ ये हो जा, क्या ऐरावत हाथी हो जा. तो वो ऐरावत हाथी एक योजन का बड़ा हो, एक लाख योजन का,
एक लाख जितना बड़ा.
तो कैसा इधर तुम्हारा अयोध्या में जिधर जिधर समोसन लगा होगा सुनना, तो उसके 1000 सूंड होती है. एक एक सूंड पे सरोवर होता है, सरोवर में कमल होते हैं और कमल के ऊपर वो नृत्यांग
अप्सराएं
नृत्य करती है और बाकी लोग हैं जो म्यूजिक म्यूजिक जो कुछ होगा आने गाने इंस्ट्रूमेंट के साथ. हाँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ. लेकिन ये
निकले तो इतना वैभव लेके निकले.
हाँ, जो भी होता हो
उनके अलग अलग धारण करते हैं.
यानी अपने को लगता है ये कैसा, ऐसा कैसा होगा, इतना इतने हजार सुन वाला वो कैसा होगा. अरे भाई पर वो यहाँ आएगा तो अपने यहाँ जैसा मान लो कि आदिनाथ भगवान के समोचरण में आए होंगे, तो उसके हिसाब से वो अभी भगवान महावीर के समोचरण में आए होंगे, उसके हिसाब से कम होगा.
ऐरावत तो उसमें आएगा, जन्म
कल्याण. हाँ, तो मुझे यही बताना है कि इस तरह से फ्लक्चुएट होता है उनके साथ. पहले पहले हमें भी ऐसे लगते थे ये सब गप है गप है, लेकिन बिल्कुल नहीं है. अरे इसके पीछे पूरा लॉजिक है भाई, जो हम नहीं जानते हैं. अब जब समझ गए हैं तो दूसरे को समझा नहीं सकते.
लेकिन दिखते मनुष्य जैसे
नहीं, अभी उसकी
वो
बहुत
लंबी रूप धारण कर रही है.
हाँ, यहाँ के तो मनुष्य जैसे फोटो फोटो तो ऐसे ही दिखाते हैं.
फोटो तो आपको समझने के लिए निकालते हैं. नहीं नहीं, वो तो होते हैं, लेकिन मनुष्य वो कह रहे हैं मनुष्य जो बैठे हैं, देव भी बैठे हैं, ऐसा हम पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं इनका देना. हाँ वो तो नहीं नहीं चलो चलो, ये बहुत सारी ऐसी वो भी आते. चलो, यहाँ तो ऐसी कोई बात आती है तो अपन एकदम सजग हो जाते हैं और आत्मा आता
है. देशता लक्ष्मी केवा में आवे छे, माने देशता को ही देशता लक्ष्मी किया है, ब्रैकेट में डाला है, तो सही है कि
विचार होना
आप में नहीं होगा.
गुजराती गुजराती मुझे बता
रहा हूँ, लिखा है कि पूर्व भवे समय देने आत्मा पास थी उपदेश सांभळेल होय छे. सांभळेल होय छे ने उपदेश को देशना कहेंगे.
और
सुना है ने उसने सुना समझा ग्रहण किया है ने समझा और धारण किया. क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेगा तो बाद में उस पर वो
सोचना
वगैरह कैसे होगा, क्योंकि जो सुना है उस पर अपने यानी अपनी बुद्धि से निर्णय करेगा। वो बात तभी हो सकती कि जो सुना है वो समझा और समझ कर उसको कुछ
धारणा
में बैठा है, क्योंकि सुनने का समय है और आगे तत्व विचार का समय, इसमें थोड़ा तो गैप है।
बिल्कुल,
एक बार उसने वो धारण कर दिया है तो बाद में सभी लब्धि एट ए टाइम चालू हो जाए, परंतु शुरुआत में जब ये इच्छा जब तक नहीं सुनी और अभी सुन लिए, हो सकता है वही तीर्थंकर के संवर्षण में बैठे बैठे उसने हिंदी
में भी, इनका कहना गुजराती में नहीं है, केवल
सामने
बैठे गुजराती में डिटेल में
हमने देखा मीठा था,
गुजराती
श्रवण
गुजराती में डिटेल में नहीं,
धारण और परिणाम उसमें तो पांच बातें हुई, श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण और परिणाम, ये सब नहीं आगे पढ़ेंगे।
बिल्कुल, देखो मैं अभी जो लिखा है फिर से पढ़ूंगा। उपदिष्टि तत्व का श्रवण यानी जो उपदेशित जो तत्व है उसका सुनना, ग्रहण यानी समझना और धारण यानी धारणा में रखना, फिर बाद में विचार होना, वो विचार होने को देशना लब्धि का, ये बात गुजराती में नहीं लिखी है।
ये केवल विचार होना था नहीं,
हाँ निर्णय वही
श्रवण ग्रहण सभी सभी उसके देशना लब्धि के सभी ज्ञान की परे है ना, लास्ट तक ये सभी स्टेजेस देशना लब्धि के, क्योंकि देशना लब्धि किसकी परे है,
ज्ञान
लब्धि हुई नहीं प्राप्ति हुई नहीं, क्या है देशना को उसने समझा तो समझा ने ज्ञान में लिया, ज्ञान में लिया धारणा तक, क्योंकि ये सब विचार करना ये सब ज्ञान की परिया में लिया।
उसके बिना यानी देशना के बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वह उपदेश सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है, क्योंकि हमने तो भाई अनेकों बार समोचरण में हम हाजिर होके आए हैं, साक्षात केवली भगवान को भी सुना है, फिर भी उनका उपदेश हमने बराबर नहीं पकड़ा है, ग्रहण नहीं किया है, तो वो सम्यक दर्शन हमें भी नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं वह उपदेश सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं करता है। ज्ञानी का उपदेश तो निमित्त मात्र है, अज्ञानी का उपदेश सुनकर कोई सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता, यह नियम है, और यदि सद्गुरु का उपदेश सम्यक दर्शन उत्पन्न करता हो तो जो जो जीव उस उपदेश को सुने उन सबको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। क्लैरिटी थी ना बराबर, सद्गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ है यह कथन व्यवहार मात्र है, व्यवहार मात्र का अर्थ क्या बताया, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन है।
देखो निमित्त से कार्य नहीं होता है, फिर भी जहाँ कार्य होता है वहाँ उचित निमित्त होता है, उचित शब्द डालते हैं, क्योंकि अज्ञानी के उपदेश से नहीं होगा और ज्ञानी के उपदेश से ही होगा, परंतु ज्ञानी के उपदेश से होता है तो होता तो अपने से होता है, उपादान से होता है, परंतु निमित्त रूप से ज्ञानी का ही उपदेश होगा अज्ञानी का नहीं, इसको कहेंगे निमित्त। ये निमित्त का ज्ञान कराया जाता है ना, उसको लिया जाता है ना हटाया जाता है ना जुटाया जाता है, कुछ नहीं, बस क्या होता है उसकी बात यहाँ।
ये भी
बाह्य
निमित्त है, निमित्त का
हाँ, ये देशना जो है वो किसका निमित्त है,
नहीं नहीं
नहीं वही पूछ रहे,
ये जो गुरु की देशना है,
हाँ
गुरु को यहाँ माने देशना को बाह्य निमित्त,
हाँ किसका निमित्त बता रहे हो, कौन से कार्य समय दर्शन तो बहुत आगे हुआ, अभी देशना लब्धि का ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने में वो उपदेश निमित्त है, उस तत्वों का ज्ञान हुआ बस, फिर भी हम सम्यक्त्व का निमित्त उसे कहते हैं, परंतु निमित्त और नैमित्त एक समय में होता है, जो हमने तत्व समझा है वो देशना तो देशना लब्धि का निमित्त कहेंगे, सम्यक्त्व का समित्व बहुत आगे चलकर होगा, जब उसका तत्व निर्णय पर पहुंच गया, प्राय लब्धि हो गई, करण लब्धि हो गई, तब जाके समित्व हुआ। एट ए टाइम चार तो एट ए टाइम शुरू होती है, पांचवी क्रम से होती है बाद में, और फिर बाद में समित्व होता है, नियम रूप से होता है।
करण लब्धि शुरू हुई तो सम्यक दर्शन
अंतर्मूर्त काल तो जाएगा ना क्रम से।
लेकिन आपका जो कहना है यहाँ गुरु का उपदेश से आपको बताना था, गुरु गुरु तो बाह्य निमित्त ही है, अंतरंग निमित्त नहीं है,
परंतु ये तो उसके बिना नहीं होता, तो उसी को सम्यक्त्व का कारण कहना कोई गलत नहीं है, परंतु हमें उसमें एग्जैक्ट उसका
क्या वजन है,
क्योंकि जहाँ कार्य होता है उसी समय निमित्त होता है, तो वहाँ कर्मों के वगैरह जो अवस्था है उसको निमित्त कहते हैं, वो नियम रूप निमित्त होगा, अंतर नहीं नियम रूप नियम, और फिर बाह्य में किसी ने जिनमें देखा वगैरह वो भी उसको देख कर वो अंतर्मुख हुआ है, ये सब में ले लेना।
अब यहाँ इनको इस बात को एम्फोसाइज करना,
वो तो हर कार्य में लगेगा, वो तो उपादान में आ जाएगा।
यहाँ पर गुरु को जो निमित्त कहा गया है सद्गुरु कहा, यानी सत्य सच्चा गुरु, क्योंकि अज्ञानी के जो देशना नहीं हो सकती, इस बात को एम्फोसाइज करने के लिए देवगुरु शास्त्र को विशेष रूप से यहाँ जोर दिया गया है।
सद्गुरु में सबसे पहले तीर्थंकर लेना, क्योंकि मूल उपदेश तो उन्हीं से तैयार आ रहा है, और उसके उद्देश्य के अनुसार जो परंपरा चली है, आत्म यानी जीवों ने अपने स्वयं आत्मज्ञान प्रकट किया है और ये उपदेश की धारा चल रही है, उसको यहाँ निमित्त देशना रूप से ले लिया।
ठीक है, एक ही शब्द होते हैं लेकिन उसको अलग अलग अर्थों से यूटिलाइजेशन होता है, तो आपने कल्पना के अनुसार उसका अर्थ करा कि सद्गुरु यानी कोई विशेष व्यक्ति, ऐसी बात नहीं। तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का,
तीसरा,
दूसरा कहाँ गया,
अभी पढ़ा।
अच्छा, अधिगम का स्वरूप इस अध्याय के छठवें सूत्र में दिया है, वहाँ बताया है कि प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है, यानी अधिगम यानी उपदेश जो है वो प्रमाण और नय के द्वारा होता है। प्रमाण और नय का स्वरूप उस सूत्र की टीका में दिया है, वहाँ से ज्ञात करना चाहिए।
चौथा का अर्थ समझते हैं ना, ज्ञान जानना, अधिगम में उपदेश नहीं, अधिगम में ज्ञान की पर्याय, ज्ञान
उपदेश
अधिगम ज ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान उपदेश से ज्ञान हुआ है ना।
प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है, लिखा ना,
अधिगम लिखा है ना, अधिगम होता है ना, क्या होता है, ज्ञान प्रमाण द्वारा और नय द्वारा होता है,
एक ही शब्द के अनेक अर्थ है। जीव को, चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूँ, जीव को अपने भूल के कारण अनादि काल से अपने स्वरूप के संबंध में भ्रम बना हुआ है, इसलिए उस भ्रम को स्वयं दूर करने पर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। जीव जब अपने सच्चे स्वरूप को समझने की जिज्ञासा करता है तब उसे आत्मज्ञानी पुरुष के उपदेश का योग मिलता है। अभी आपने बताया ना तत्समय की योग्यता, तो ये अंदर से ऐसी बात निकली कि भाई मुझे समझना ही है, तो सहज रीति से बाहर में कोई उपदेश देने वाला
संयोग हो जाता, व्यक्त हो या नहीं भी हो, परंतु अंदर से वो तो ऐसी जिज्ञासा हो जाती है आत्मा का स्वरूप समझने की, और उसको समझाने वाला न मिले ऐसा नहीं बन सकता, उपदेश योग मरे चे।
यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ योग्यता हो जाती है तो सामने निमित्त सहज रूप से आ जाते हैं, उस उपदेश को सुनकर जीव अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यक दर्शन होता है। किसी जीव को आत्मज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनने पर तत्काल सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, और किसी को उसी भव में दीर्घ काल में अथवा दूसरे भव में उत्पन्न होता है। जिसे तत्काल सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसे अधिगमन जो सम्यक दर्शन कहा हुआ कहलाता है, और जिसे पूर्व के संस्कार से उत्पन्न होता है उसे निसर्ग जो सम्यक दर्शन हुआ कहलाता है। इन्होंने
उसी भाव में निसर्ग जो भी कहला सकते
हैं। हाँ, ये अर्थ हो गया।
मैंने 15-20 साल पहले सुना है और अभी होता है तो उसको निसर्ग मिल गया। ऐसा नहीं, उसी भाव में अधिगमन कहते हैं।
कोई जीव अपने आप शास्त्र पढ़कर या अज्ञानी का उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देशनालब्धि के विषय में सब प्रश्नों का संपूर्ण समाधान वाला लेख देखो, आत्मधर्म वर्ष 6वां अंक नंबर 11 और 12। अभी कहां से
ये बात नहीं लिखी है?
ये है ना,
अपने आप पढ़कर।
हिंदी लिया तकलीफ है।
देशना पढ़ने को नहीं कहा है, सुनने को कहा। ये बात मान लीजिए,
कोई के भाव में लंबे होते तो दक्षिणा भाव में उत्पन्न है अधिगमन के, भाव में वो भी अधिगमन करता है।
निसर्ग जो है उसमें निसर्ग जो लिखा है, जेने पूर्वना संस्कार के उत्पन्न थाय के तेने निसर्ग जो कहवाय छे। જેને તુરત સમય દર્શન કરવું હોય તેને અધિગમન સમય દર્શન
કરવું
નહીં, બસ થાય છે એટલા બતાવે, થાય છે આધા સ્ટોપ હૈ,
આધા સ્ટોપ
હા। જેને તુરત ઉત્પન્ન થાય છે તેને અધિગમન થાય, પહેલે તો પહેલે એ વાત કન્ડિશન નક્કી હૈ કે જ્ઞાની કે ઉદ્દેશ્ય હોય, या तो उसी भाव में होगा या नेक्स्ट भाव में होगा।
नेक्स्ट भाव में होगा, उसी भाव में या नेक्स्ट भाव में। हाँ,
ये तो बात है। यानी सर्वथा निसर्ग जो कोई होता ही नहीं, देशना उसने जरूर सुनी या इस भाव में सुनी या पूर्व भाव में सुनी, एक बात इतनी हो गई। अब जिसने इसी भाव में सुनकर प्राप्त कर लिया है वो अधिगमज है, और बहुत काल के बाद जिसने प्राप्त किया उसको निसर्ग है।
इमीडिएट भाव में
उसी
भाव में है ना, एक पश्चिना भाव में उत्पन्न
है, उसको
निसर्ग
पश्चिना नेक्स्ट।
यानी बिना देशना के सम्यक तो होता ही नहीं, ये नक्की है। ये पंचलब्धि में इसके बारे में बहुत चर्चा की और यहाँ पर वही वाक्य मिला, बहुत अच्छा लगा।
कौन सा
ये ना, अपने आप पढ़कर या ज्ञानी के उपदेश से भी नहीं हो सकता,
इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए। जैसे वैद्य
श्री बहन को भी ये प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सीढ़ी सुनना भी देशना नहीं कहला है, उनके साथ चर्चा हुई थी। अभी ये सुनते हैं, कुछ करते हैं, स्वयं विचार करते हैं, किसी को पूर्व की देशना है और वो उसमें चल जाए, वो बात अलग है। जैसे स्वामी जी ने तो समय सार पढ़कर कैसे हुआ उनका पूर्व की देशना, वो तो अभी का बाह्य निमित्त कहलाएगा, परंतु देशना तो पहले मिली होगी तो उनकी इसका अर्थ दिखाएगा।
नहीं, आप इस तरह समझ सकते हैं, कुछ लोगों ने साक्षात गुरुदेव को सुना था उनकी, और कुछ लोग अभी नई पीढ़ी है उन्होंने उनको सुना ही नहीं लेकिन उनका अभ्यास कर रहे हैं, उनकी सीडी सुन रहे, तो केवल सीडी सुनकर उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जिन्होंने पहले सुना था और अभी सीडी सुन रहे हैं और उनके पहले की याद आ जाए और फिर उसका कन्वर्शन हो जाए तो उनके हो सकते, पर उसका निमित्त तो वही कहेंगे सीडी नहीं।
या अन्य भी पूर्व में ज्ञानी मिले होंगे उसके, या बाद में भी मिल सकते, तो उसके द्वारा ने वो ज्ञानी का निमित्त, क्योंकि उसमें तो समय नियम सार में मेरे ख्याल से वहाँ उस जीव के कर्मों की अवस्था को वहाँ दिया, दर्शन होने की जो कोई अवस्था है उसकी, उसको उन्होंने निमित्त रूप से लिया ज्ञानी के, उसमें केवल उनके शब्द बोलने को भी नहीं लिया, वहां पता नहीं किस अपेक्षा से लगाया
वहां अंतरंग निमित्त का है। तीर्थम भी गाता है, नियम साधी तीर्थम भी गाता है, उसमें उनको ज्ञानी पुरुष को अंतरंग निमित्त कहा है। जैसे अंतरंग निमित्त तो ज्यादा करके कर्म को ही कहा जाता है,
नियम रूप निमित्त को अंतरंग है, निमित्त की परिभाषा ही नियम रूप।
अब देखें, जैसे वैद्य की यानी मेडिकल ज्ञान प्राप्त करना हो तो वैद्यक के ज्ञानी गुरु की शिक्षा से वह प्राप्त किया जा सकता है, वैद्यक के अज्ञानी पुरुष से नहीं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञानहीन यानी अज्ञानी गुरु के उपदेश से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सच्चे सुख के इच्छुक जीवों को उपदेश का चुनाव करने में सावधानी रखना आवश्यक है। इसलिए सच्चे सुख के इच्छुक जीवों को उपदेशक का चुनाव करने में सावधानी रखना आवश्यक है। जो उपदेशक का चुनाव करने में भूल करते हैं वे सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, यह निश्चित समझना चाहिए। अभी तत्वों के नाम बताएंगे, ये चौथा सूत्र हम पढ़ेंगे।
जीवा जीवा स्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम्। अभी इसको
जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष
मोक्षाह
तत्वम। अभी ये सबको एक तत्वम कहा, मतलब ये जिसको हम कहते प्रथम पुरुष, मतलब ये एक वचन वापस क्या कहते हैं,
इसलिए अलग अलग मोक्षाह कहते हैं, परंतु इसमें से प्रत्येक है वो तत्व है, जीव तत्व है अजीव तत्व है, परंतु एक साथ लिख दिए इसलिए सबको मिलकर उन्होंने मोक्षाह कहा।
जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व हैं। ठीक है, जीव जीव अर्थात आत्मा वह सदा ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थाई है, यानी ध्रुव है, टिकने वाला है। जब वह परनिमित्त के शुभ अवलंबन में युक्त होता है तब उसके शुभ भाव यानी पुण्य होता है, और जब अशुभ अवलंबन में युक्त होता है तब अशुभ भाव यानी पाप होता है, और जब स्वावलंबी होता है तब शुद्ध भाव यानी धर्म होता है।
शुभ का अवलंबन, अशुभ का अवलंबन और स्व का अवलंबन। स्वावलंबी यानी क्या? अपना काम अपन करने वाला, अपना अवलंबन लेने वाला।
अजीव जिसमें चेतना ज्ञातृत्व नहीं है, ऐसे द्रव्य पांच है, उनमें से धर्म अधर्म आकाश और काल यह चार अरूपी है, तथा पुद्गल रूपी यानी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। अजीव वस्तुएं आत्मा से भिन्न है तथा अनंत आत्मा भी एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र है। यहाँ देखो क्या बताया है कि जो भिन्न वस्तु है उनमें जीव अन्य जीवों को भी लिए, क्या कहा देखो, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं मैं, अजीव वस्तुएं आत्मा से भिन्न है तथा अनंत आत्मा भी यानी स्वयं को छोड़कर अनंत आत्मा भी, यानी यहां तो उन्होंने जनरल बात करी, एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र है, पराश्रय के बिना जीव में विकार नहीं होता। यानी हम तो बहुत बार ऐसा बोले हैं, सीखे हैं कि पर और पर्याय पर जब इस जीव की नजर जाती है तो उसको राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना रहते हैं, ये तो मिथ्यात्वी की अपेक्षा से बात कही रही है। पराश्रय के बिना, ये पराश्रय कौन लेगा, ये जो मिथ्या दृष्टि है वो ही लेगा। जीव में विकार नहीं होता, परोन्मुख होने से, पर के तरफ उन्मुख यानी कि पर के तरफ कॉन्सेंट्रेशन का हो या ध्यान दिए बगैर, ध्यान देने से जीव के पुण्य पाप के शुभाशुभ विकारी भाव होते हैं। अब आश्रव, ये आश्रव लिखा है, कहीं कहीं लोग आश्रव करते हैं, आश्रव वो गलत है, आश्रव नहीं है, स्र चाहिए। स को क्रम कैसा लिखते हैं, ऐसा स्र को र जोड़ने का है, आश्रव स को ही। ये श्रवना समझते हो, या तो कुछ ऐसे जल गया होगा तो उसमें से पानी निकलता है, श्रवना बोलते हैं, द्रवना। तो आश्रव यानी वो श्रवते आना, मर्यादा पूर्वक आने को, किसको तो कर्मों की बात है, या यहाँ जीव के शुभ अशुभ परिणामों को। क्या कहा देखो, आश्रव विकारी शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है वह भावाश्रव। ये अरूपी अवस्था क्यों कही है वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई यहाँ लिखा है शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है, अरूपी अवस्था ऐसा लिखा है, अरूपी क्यों, ऐसा क्यों कहा?
बरोबर है, आगे उसका कारण बताओ। हाँ, यही ऐड करना है आपको, आत्मा आरोपी है तो उसके गुण आरोपी और उसके पर्याय आरोपी।
तो ये विश्व में कितने द्रव्य आरोपी है भाई साहब, एक या दो, दूसरा कोई नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा है, चार है, छह में से चार आरोपी और दो रूपी। देखो नलिन भाई चुप बैठे, बोलना चाहते, बोलो बोलो।
पांच आरोपी है,
अरे यहां अभी बताया था ना दो मिनट पहले। देखो जी, देखो जिसमें चेतना ज्ञातृत्व नहीं, ऐसे पांच द्रव्य है, उनमें से धर्म अधर्म आकाश काल ये चार अरूपी है और जीव स्वयं अरूपी है, तो पांच हो गए ना। चलो तो यहां कह रहे हैं विकारी शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है वह भावाश्रव, और नवीन कर्म रजकणों का आना आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहना सो द्रव्याश्रव है। पुण्य पाप दोनों आश्रव और बंध के उपभेद है। पुण्य दयादान भक्ति पूजा व्रत इत्यादि जो शुभ भाव जीव के होते हैं वह अरूपी विकारी भाव है, वह भाव पुण्य है, और उसके निमित्त से जड़ परमाणुओं का समूह स्वयं अपने ही कारण से स्वतः एक क्षेत्रावगाह संबंध से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है, यानी कर्म की बात करी है। और मिथ्यात्व हिंसा असत्य चोरी अव्रत इत्यादि जो अशुभ भाव है सो अच्छा तुम्हारा वो हिंदी है ना, गुजराती में नहीं है, लकी ना को ना
सबसे बड़ा पाप है ना,
हो ना उसको जो भूल गए, मिथ्यात्व हिंसा असत्य, ये वास्तव में इसमें ऐसा लिखा है गुजराती से हिंदी अनुवाद हुआ है।
नहीं नहीं ये क्या है, उसमें करेक्शन और एक्स्ट्रा डाला,
इसमें भी नहीं है,
ये तो इसके जैसे वो छापा है, भले एडिशन कोई भी हो उसमें गुजराती में कोई चेंज नहीं किया है। ये चौथी आवृत्ति है, ये गुजराती चौथी आवृत्ति, कितने नंबर की है, हमारी चौथी है।
आपकी कितनी आवृत्ति?
दसवीं
2008 तो दस आवृत्ति तक वो गलतियां चली। हिंदी है? चलो अच्छा है।
चलो चलो
चौथी से
हमारी पांचवी आवृत्ति है वीर संवत 2502। चलो चलो अब पाप है उसके निमित्त से जड़ की शक्ति से जो परमाणुओं का समूह स्वयं बंधता है वह द्रव्य पाप है। परमार्थतः वास्तव में यह पुण्य पाप आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह आत्मा की क्षणिक अवस्था में पर के संबंध से होने वाला विकार है। बंध आत्मा का अज्ञान राग द्वेष पुण्य पाप के भाव में रुक जाना स्वभाव बंध है और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना सो द्रव्य बंध है। ये सात तत्वों के बारे में तो हम सभी जानते हैं इसलिए केवल पढ़ रहा हूं। संवर पुण्य पाप के विकारी भाव को यानी आश्रव को आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव संवर है और तद अनुसार नए कर्मों का आगमन रुक जाए सो द्रव्य संवर है। निर्जरा अखंडानंद शुद्ध आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप में शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध शुभाशुभ दोनों को लिया अवस्था का आंशिक नाश करना सो भाव निर्जरा है और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशता खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा है। यहां ये जो कर्म खिर रहे हैं उसको अंशता कहा है। पूरे भूल जाए तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध अवस्था का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना सो भाव मोक्ष है और निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश यानी अभाव होना सो द्रव्य मोक्ष है। सात तत्वों में से प्रथम दो तत्व जीव और अजीव द्रव्य है तथा शेष पांच तत्व उनकी जीव और अजीव की संयोगी तथा वियोगी पर्याय यानी विशेष अवस्थाएं हैं। आश्रव और बंध संयोगी है तथा संवर निर्जरा और मोक्ष जीव अजीव की वियोगी पर्याय हैं। ये बहुत अच्छा होता है। आप प्लीज में पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
आ प्रमाणे जेव सात तत्वों ने એને પુણ્ય પાપ ને આશ્રવ ના પેટા માં ગણ્યા છે તેથી અહી સાત તત્વો કહ્યા છે સ્વરૂપ છે અને જૈસા સાત તત્વો કા સ્વરૂપ હૈ તેવું જે જીવ શુભ ભાવ થી વિચારે છે તેને શુદ્ધ નું લક્ષણ હોય તો વ્યવહાર સંકેત છે અને સાત તત્વો કા જૈસા સ્વરૂપ બતાયા હૈ વૈસે શુભ ભાવ કે કાલ મેં ઉસકા જો વિચાર ચલ રહા હૈ વો શુભ ભાવ કી બાત હૈ શુદ્ધ ઉપયોગ કી બાત નહીં હૈ તો ઉસકો વ્યવહાર સંકેત કહા। व्रतादिना शुभ भाव संवर निजरा मा गणे तो आश्रव तत्व नी श्रद्धा मा भूल छे क्योंकि व्रतादि का शुभ भाव है और शुभ भाव आश्रव है और उस आश्रव का अगर हम संवर कहेंगे निर्जरा कहेंगे तो हमारी भूल होगी। व्यवहार श्रद्धा मा कोई पड़के भूल न आवे तेम सात तत्व माथे शुद्ध नहीं वड़े शुद्ध नहीं से यानी क्या वड़े ने शुद्ध ने से शुद्ध ने किसको कहना हाँ पर शुद्ध नहीं किसको कहना बोलो नहीं वाले
को जो अपना विषय बनाता है
शुद्ध ने का विषय क्या शुद्ध क्यों कहा अशुद्ध ने किसको कहना
विकारी को विकारी पर्याय को विषय बनाता है
भेद करने को अशुद्ध कहते हैं और अभेद को शुद्ध कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं देखो, शुद्ध न बड़े एक रूप अखंड ज्ञायक स्वभावी आत्मा ने, एक रूप लिए ना अखंड अभेद ऐसा ज्ञायक स्वभावी आत्मा ने तारवी ले, वो तारवी लेने उसकी उसका लक्ष्य करना किसमें, सात तत्वों में से सात तत्व तो भेद रूप हो गए, अभी अभेद उसमें एक अखंड आत्मा को ले लेना लक्ष्य में, तो वो कहेंगे शुद्ध ने से आत्मा को उसने जाना। वे परमार्थ श्रद्धा इटली के समय दर्शन छे, वो समय सार प्रवचन भाग एक पृष्ठ अनुकम बता, वो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है, वो उसमें नहीं लिया। हाँ, हिंदी में नहीं लिया, अब आगे बढ़ो।
कौन सा दूसरा
खास करके ये बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा ज्योति जो है वो सात तत्वों से भिन्न है, वो अभेद रूप से सात तत्व है,
सात तत्व जो है वो जीव की ही पर्याय है, सात तत्व कौन नौ पदार्थ को जीव की ही पर्याय है, उसमें अखंड रूप जीव को लक्ष्य में ले लेना।
वो लेता है वो ज्ञान से,
जैसे समय सार में जो शुद्ध ने का विषय कहा ना, वेद किए बिना अखंड, उसी को त्रिकालिका, उसी को परम पारायण, वो तो नाम अलग अलग थे, यानी सम्यक दर्शन किसको कहना, ये बात जो सात तत्वों का वेद रूप विचार चल रहा है वो व्यवहार सम्यक दर्शन में लिया उन्होंने,
वो भी ज्ञान ही का
ये लिया ना अभी हमने पढ़ा था।
अगर शुद्ध का लक्ष्य हो तो
देखो, सात तत्वों नो स्वरूप जेव छे ते जीव शुभभाव थी विचारे तेने शुद्ध नो लक्ष्य हो तो व्यवहार समकित, हाँ व्यवहार समकित भी अभी किसको कहेंगे, जिसको निश्चय उसको कहेंगे।
यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है, ये सात तत्वों को दो डिफरेंट एंगल से डिस्क्राइब किया गया, पहले में तो अभी यहां तो एक ही बात बताई है, दूसरी केवल रिफर किया है, जो अभी आपको यहां पर पढ़ने में आया था कि जीव तत्व और अजीव तत्व इनको यहां द्रव्य तत्व कहा गया, और जो आश्रव बन संव निर्जरा ये भाव में गिनेंगे तो वो जीव के पर्याय गिनेंगे, और द्रव्य में गिनेंगे तो पुद्गल कर्म के, ये बताएं। अभी अन्य कोई ठीक जगह पे उसमें पुण्य और पाप को इंक्लूड करते हुए नौ पदार्थ की बात की है, जैसे हम समयसार में भी पढ़ते हैं, वहां कह रहे हैं कि ये नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्ञान ज्योति वह शुद्धन है का विषय, यानी वो सात अलग अलग नहीं है, हर जगह वो है, तो वहां तो वो सातों नवी तत्वों को नौ पदार्थों को पर्याय तत्वों में लिया है, वहां कोई जैसा अभी हमने द्रव्य तत्व और पर्याय तत्व की बात करी वैसा नहीं, वहां सिर्फ पर्याय तत्व की अपेक्षा से कथन है, तो इसलिए यहां पर अभी जो आपने गुजराती में पढ़ा वो नौ पर्याय तत्व की बात कर,
वो जो आपने कहा कि नौ
पर्याय
तत्व लिया है, वेद की अपेक्षा
से है कि काल की अपेक्षा से, वेद या काल, काल की अपेक्षा, अलग अलग पर्याय है ना, तो उसकी अपेक्षा से अलग अलग काल की बात नहीं,
काल समय की पर्याय
ना, वो एक एक समय की पर्याय की अपेक्षा वो वेद ऐसा है,
यानी इसमें चार साल के बाद दो साल के बाद ऐसा कुछ
अगर पढ़ना है कलश टीका में
पढ़ना। देखो यहाँ दूसरा पॉइंट दोबारा पढ़ता हूँ मैं, सात तत्वों में से प्रथम दो तत्व जीव और अजीव तत्व, अजीव द्रव्य है तथा शेष पांच तत्व उनकी यानी कि इनकी जीव और अजीव की संयोगी तथा वियोगी पर्याय है। देखो यहाँ तो ये बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, कुछ संयोगी है और कुछ वियोगी है, तो अपने को लगता है संयोगी अरे आश्रय और बंध को संयोगी कहा, जो सोमवार निर्जला मोक्ष को वियोगी तत्व कहा, वो बहुत ही बढ़िया बात बताई। देखो कहते हैं संयोगी तथा वियोगी पर्याय विशेष अवस्थाएं हैं, आश्रय और बंध संयोगी है क्योंकि नए नए आते हैं ना, और सोमवार निर्जला और मोक्ष जीव अजीव की वियोगी पर्याय है। बोलो, बहुत ही अच्छा बताया। जीव और अजीव तत्व सामान्य है तथा शेष पांच तत्व पर्याय होने से विशेष कहलाते हैं। ये अपना पॉइंट पढ़ना रह गया था, यानी द्रव्य को सामान्य कहा और पर्याय को विशेष कहा। जिसकी दशा में अशुद्ध में से शुद्ध करना है उसका नाम तो प्रथम अवश्य दिखाना ही चाहिए, इसलिए जीव तत्व प्रथम कहा गया। अब ये पहले इसी क्रम से क्यों लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जीवा जीव आश्रय वगैरह ऐसा सब कुछ बताया, तो इसलिए कहते कि जिसकी दशा को अशुद्ध में से शुद्ध करना है, द्रव्य को नहीं करना है, पर्याय को, अवस्था जो अवस्था कैसी है, दशा कैसी है, अशुद्ध है और उन अशुद्ध में से उसको शुद्ध करना है, तो इसलिए उसको पहला बताया। तो प्रथम अवश्य दिखाना चाहिए, इसलिए जीव तत्व प्रथम कहा गया है। पश्चात जिस ओर के लक्ष्य से, यानी जिसके ओर उसने लक्ष्य किया है, उससे अशुद्धता अर्थात विकार होता है, उसका नाम देना आवश्यक है, इसलिए अजीव तत्व कहा गया है। अशुद्ध दशा के कारण कार्य का ध्यान कराने के लिए आश्रय और बंध तत्व कहे गए हैं। तत्पश्चात मुक्ति का कारण कहना चाहिए, और मुक्ति का कारण वही हो सकता है जो बंध और बंध के कारण से उल्टे रूप में हो, यानी उससे विरुद्ध बात हो। देखो बंध का कारण क्या है नितिन भाई? बंध का कारण तत्वों में हमें उत्तर चाहिए, आश्रय। इन्होंने बताया ना, देखो क्या कहते हैं, मुक्ति का कारण वही हो सकता है जो बंध और बंध के कारण उससे उल्टे हैं, विरुद्ध हैं, तो क्या हो सकते हैं, संवर निर्जरा आदि। इसलिए आश्रय के निरोध होने को संवर तत्व कहा है, और अशुद्धता यानी विकार के एक देश दूर हो जाने के कार्य को, एक देश यानी सभी नहीं ना, अवश्यता जाते हैं ना, इसलिए उसको निर्जरा तत्व कहा, और जीव के अत्यंत शुद्ध हो जाने की दशा को मोक्ष तत्व कहा है। इन तत्वों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए वे कहे गए हैं। उन्हें समझने से जीव मोक्षोपाय में यानी मोक्ष के उपाय में युक्त हो सकता है। देखो होता है ऐसा नहीं लिखा हो। मात्र जीव अजीव को जानने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि अन्य पर्याय भी उसके ध्यान में आनी चाहिए, इसलिए कहते हैं सिर्फ जीव अजीव को जानने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं होता। इसलिए जो सच्चे सुख के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें इन तत्वों को यथार्थतया जानना चाहिए। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो बिल्कुल ऐसा लिखा है, प्रयोजनभूत सात तत्व। प्रयोजन क्या है मोक्ष की प्राप्ति कराना है, वो तुझे करने थे इन सातों ही तत्व। वो आश्रय भी प्रयोजनभूत है, बंध भी प्रयोजनभूत है, क्योंकि उसका स्वरूप हम जानेंगे तो उससे हम दूर होंगे, और संवर निर्जरा को जानेंगे तो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। फॉलो करना यानी क्या, उस रूप पर्याय प्राप्त करना। या तो क्या बता रहे, इसलिए जो सच्चे सुख के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें इन तत्वों को जौका त्यों यथार्थतया जानना चाहिए। यहां तो जानने की बात कर रहे हैं और वहां जौका त्यों श्रद्धान करने की बात कर रहे हैं। सात तत्वों के होने पर भी इस सूत्र के अंत में तत्त्वम ऐसा एक वचन सूचक शब्द प्रयोग किया गया है जो यह सूचित करता है इन सात तत्वों का ज्ञान करके भेद पर से लक्ष्य हटाकर जीव के त्रिकाल ज्ञायक भाव का आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रकट कर सकता है। अब चौथे सूत्र का सिद्धांत, इस सूत्र में सात तत्व कहे गए हैं, उनमें से पुण्य और पाप का समावेश आश्रय और बंध तत्वों में हो जाता है, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो उस कार्य का नाम प्रयोजन है। जीव और अजीव के विशेष यानी भेद बहुत से हैं, उनमें से जो विशेषों के साथ जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो और जिसका अयथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान न हो, रागादि को दूर करने का श्रद्धान न हो और उससे दुख उत्पन्न हो, इन विशेषों से युक्त जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत समझने चाहिए। जैसा कि हमने ऐसा बताया है, ये क्या है, तो किसी ने कहा ये रबर है, किसी ने कहा ये चॉकलेट है, तो जो रबर है कहता है वो सम्यक दृष्टि और जो चॉकलेट कहता है वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा है नहीं, ये बताना चाहते। तो जो है सात तत्व उनको यथार्थता जाने वो आवश्यक है। अब कहते हैं आश्रय और बंध दुख के कारण है तथा संवर निद्रा और मोक्ष सुख के कारण है, इसलिए जीवादि सात तत्वों को श्रद्धान करना आवश्यक है। इन सात तत्वों की श्रद्धा के बिना शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो सकता। वहां पर बताया तो सच्चे देव गुरु शास्त्र को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। यहाँ लिखते हैं सात तत्वों की श्रद्धा के बिना शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन जीव के श्रद्धा गुण की शुद्ध अवस्था है, इसलिए उस शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए सात तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान अनिवार्य है। जो जीव इन सात तत्वों की श्रद्धा करता है वही अपने जीव अर्थात शुद्धात्मा को जानकर उस ओर अपना पुरुषार्थ लगाकर सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। इन सात पुण्य पाप सहित नौ तत्वों के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मकनम।